दिवस है तो हम भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी के अष्टकम से शुरू करते हैं। श्री जगन्नाथ अष्टकम
कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाभिरि नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा संभुद ब्रह्मा मरा पति गणेशार्चिता पदो जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु मे तुझे सव्य वेणु शिरसि सिखि पीछं काटी तटे कुलं नेत्रांत सह चर कटाक्षं विधत्ते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अहम बोधस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे सन् प्रासादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारा भार स जल जल दश्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम स्मरद मल पंके रुह मुख राराध्य स्तुति गण शिखा गीत चरितो रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतं सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नगन पचगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी ए जगन्नाथ स्वामी नगन पचगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुबलय दलत्फुल्ल नयन निवासी नीलाद्रो निहित चरण अनंत शिरसी दशानन्दी राधा सरस बपुरा लिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै जाच्य राज्यं न च कनक माणिक्य विभव जाचेहं रम्यं सकल जनकम्यं वरवधू सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृततरं सारं सुरपते हरत्वं पापानं धृततिमपरं जादवपते अहो दीननाथ निहित चरण निश्चित ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति श्री जगन्नाथ देव भगवान की, श्री जगन्नाथ स्वामी की।
श्री चोराग्रगण्य पुरुषोष्टकम रेडी।
ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपांगनानां च दुकुलचोरं। राधिकाया हृदयस्य चोरम् नवाम्बुदश्यामलकान्ति चोरम् ग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचो किञ्चनिकृत्य पदाश्रितं च करोति भिक्षुं कथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषण चोर नामापि हरति अशेषम् गिरितसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो न समानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव कोलायसे कुत्र धूतोऽद्य चोरम् छिन्नसि घोरं जमपाशबन्धम् छिन्नसि भीमं भवपाशबन्धम् छिन्नसि सर्वस्य नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरम् लोकाङ्गनानां च गुरुकुलचोरम् मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च गुरुकुलचोरम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्व चौरं हृदयान् हि मोचयामि
हरे कृष्ण। क्योंकि आज अंतिम दिवस है, पता नहीं कल आप इसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, तो उसका थोड़ा अर्थ करेंगे। ये जो अष्टकम अभी आप गाए, चौरष्टकम, तो उसको ऐसे कहा गया कि आचार्य श्री बिल्ल मंगल ठाकुर के रचित है, किसी किसी का मत है कि वल्लभाचार्य, जो भी हो दोनों बालकृष्ण के उपासक हैं। तो उन्होंने आपने उपास्य भगवान, उपास्य देव भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए ऐसे प्रशंसा वाक्य कहते हैं, जैसे आप जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी का कोई ना कोई बस होगा, अथॉरिटी होगा, बड़े हायर प्रशंसनीय पुरुष होगा, लेकिन इतने बड़े तो नहीं होंगे जितने भगवान होंगे। सर्वोपरि तो भगवान है ना, उनसे बढ़कर कोई प्रशंसनीय पूज्य वंदनीय इतने हो ही नहीं सकते। तो जो भी आप हम में से कोई छोटे बड़े हमारे लिए उससे बड़े प्रशंसनीय व्यक्ति होंगे, कभी आपको उनको प्रशंसा करने जाएंगे, बोलेंगे सर आप बड़े चोर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसे कहेंगे? ऐसे कहना प्रशंसा नहीं होगा, वो तो आपका नाम में केस कर सकता है, मानहानि केस कर सकता है। लेकिन ये उनके इष्टदेव को वंदना करते हैं, और सर्वत्र जगत के सभी को पता है कि उनके जैसे वरेण्य वंदनीय सम्मानीय पूज्य कोई हो भी नहीं सकता, है ही तो नहीं, हो भी नहीं सकता। और उनको स्तुति करते हुए वो कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्यों? क्यों आपको नंबर वन चोर है, चोरों की सरदार है, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, इसी पुरुषोत्तम मास में ऐसे पुरुष को इसलिए वंदना करते हैं प्राय जगह पर, क्योंकि आप कैसे पुरुष है ना, चोरों के सरदार पुरुष नंबर वन है, चोर अग्रगण्य पुरुषम। अब ऐसे वंदनीय पुरुष सबसे बड़े इष्टदेव है, उनको भी अच्छा लगता है सुन करके, हम भी बेशरम है, हमारे बॉस को चोर कहते हैं, वो भी सुनते हैं खुश होते हैं, अरे भैया दुनिया सुनता है, ये क्या कहता है, भगवान को चोर कहता है, हाँ क्या चोरी किया, दुनिया में क्या वस्तु है जो उनका नहीं है, अरे भैया चोरी कौन कब करता है, अरे जब आपको कोई समान अभाव पड़े, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, दूसरे के पास है आपके पास है ही नहीं, तो क्या करे, मांगने में नहीं देता, खरीदने पर नहीं मिलता, तो चोरी करेंगे, तभी तो चोरी का बात आता है ना। ईशावश्यम इदम सर्वम जत किंचात जगत्याम जगत, संपूर्ण चराचर जगत में कुछ भी वस्तु है किसका, उन्हीं का ही तो है सारे, जब सब कुछ उन्हीं का है तो चोरी क्या करें भाई, कोई दूसरा पराया वस्तु हो तो चोरी माना जाएगा ना, तो अपना ही है, चोरी कैसे किया जाए। लेकिन वो बोलते हैं चोर, बोले कैसे चोर हो सकते हैं, बोले अरे तुमको पता नहीं, मेरा तो नाम फेमस है, प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, कहाँ पता करो, हमारा जहाँ जन्म स्थान है जाकर हमारे गांव में हमारे बायोडाटा देखो, कहाँ देखो, बोले ब्रज में, ब्रजेंद्र नंदन है ना, ब्रज में जाकर पता करो, गली गली में बच्चे बच्चे को पता है भाई ये माखन चोर, बोले ब्रज में तो प्रसिद्धि है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत कहते माखन, बोले ब्रज में मेरा प्रसिद्धि है, नवनीत चोर के नाम से, माखन चोर के नाम से हर कोई जानता है। तो बोले कि अच्छा ये प्रसिद्धि है ना, और क्या, सब जानते हैं बचपन से खूब चोरी किया, बोले लेकिन इसको हम नहीं चोरी नहीं मानते, बोले क्यों, अरे किसका घर में कोई माखन चोर किया, पुलिस केस करेगा क्या, नहीं बोले क्या माखन ले लिया, चोरी तो बचपना हट है, इसको चोरी नहीं माना जाएगा, हम चोर कहेंगे कोई और चोरी ऐसा किया ना, और भी चोरी किया, उसको नहीं मानता, नहीं नहीं मानता तो कोई बात नहीं, और भी चोरी किया, और क्या चोरी किया बताओ। तो बोलते हैं ब्रजांग गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, वो क्या है ना, कपड़ा भी चोरी किया, खाली माखन चोरी किया नहीं, खाने पीने की वस्तु नहीं, पहनने का वस्तु भी चोरी किया, अच्छा पहनने का वस्तु चोरी किया, किसका चोरी किया कपड़ा, कोई दुकान में जाकर गारमेंट क्लॉथ स्टोर में चोरी चारी किया, बोला नहीं 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 नया कपड़ा नहीं है, और सेकंड हैंड क्लॉथ, यूज्ड क्लॉथ, पहना हुआ वस्त्र किसका? ना गोपिकाओं का है। अरे वो लेडीज है तो जेंट्स है, तो उनका कपड़ा से तेरा फिट नहीं बैठेगा क्या वस्त्र क्या? फिर उनका क्या नया कपड़ा होता, उनका पहना हुआ कपड़ा दुपट्टा? हाँ चोरी तो किया हूं, तो पकड़ा भी गया, फिर उनको वापस भी दिया, चोरी किया हूं। बोले उसको नहीं मानते, ये यूज्ड क्लॉथ चोरी करेगा दूसरे का, ये चोरी नहीं माना। हम अगर आप नंबर वन चोर करके मानेंगे को ऐसा चोरी है ना, नहीं दुनिया मानेगा ये कोई माखन चोरी कर लिया, किसी का पहना हुआ कपड़ा गामछा उठा लिया, इसको चोर मानेगा ना? इतने बड़े चोर की हम प्रसिद्धि करेंगे आपको, आपको वंदना करेंगे चोर कह कर, यही सामान्य चोर के? कोई ऐसे चोरी किया हो जो दुनिया में नाम करा चोर हो? बोला अच्छा ये जानना चाहते हो चोरी के रिकॉर्ड ना, तब सुन लो ध्यान से। अभी तक दुनिया में कोई माइकेलाल चोर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो मैं चोरी करता हूं वो चोरी करके दिखा दे। ऐसा चोरी कोई किया नहीं ना कर सकता है, संभव ही नहीं। ना ऐसा क्या चोरी किया तूने? बोलते अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक अनेक जन्मों का पाप को चोरी करता हूं। कोई है अब तक कोई चोरी करके दिखाए पाप को? पाप बढ़ा जाते हैं आकर, डिपोजिट कर जाते हैं, खाली नहीं कर पाते। अब खाली बोले कई जन्म जन्म का ढेर खाली कर देता हूं मैंने, अनेक जन्मा अर्जित पाप चोरम। बोले हाँ ये तो कोई चोर ऐसा है नहीं ऐसा चोरी करना। ऐसे चोर को तो रात में क्या, दिन में भी दरवाजा खोलकर वेलकम लगाएंगे, प्लीज कम, मैं लेकर जाओ कुछ यार है ना? नहीं ऐसे चोर को बुलाना पड़ेगा ऐसे पाप चोरी करने वाला। बोलते हैं कि ऐसे चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोर के अग्रगण्य चोरों की सरदार, ऐसे हमने इसी को प्रणाम करता हूं। और कुछ चोरी किया ना? और भी चोरी किया बताता हूं सुनो। और क्या न श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, खतरनाक चोर का देखिए रिकॉर्ड क्या है। हाँ? बोलते क्या चोरी किया ना, राधा जी के हार्ट को चोरी कर लिया। अरे भैया हार्ट को फ्रिज में रखने का समन है क्या ना, आलमीरा में भी बक्सा में रखते हैं क्या? ये तो हमेशा आपके अंदर सील रहता ना। आजकल लोगों को हार्ट डिजीज थोड़ा तकलीफ होने से तो कितने बाईपास और आजकल कई प्रकार के ओपन हार्ट तो डरते करते नहीं, ओपन हार्ट रिस्की नहीं करते, ऐसे इधर उधर हाथ लगाते हैं, है ना? नहीं अब कैसे हार्ट को निकाल दिया भाई? चोरी का मतलब समन चला जाए, आपको पता ना चले तब तो चोरी होगा ना। आपको जानकार में पता चले समन उठे चोरी माना जाए क्या? नहीं, मेरा आज समन रखा कोई लिया, मैं देखा तो भूल कर लिया, मैं ले लाऊ, तब तो चोरी नहीं कहा जाएगा। अगर मुझे पता नहीं चला उठ गया माल तब बना जाएगा। अरे भाई हृदय आपके अंदर सील है, आपको पता नहीं चलेगा चला गया, मतलब कितने खतरनाक चोर होगा। आपको पता नहीं चला, आपके हृदय आपके छाती के अंदर से निकाल लिया, क्या एक्सपर्टिस है चोर का? बोले जाके पता करो, राधा जी की पूछो बताएगी, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, उनके हार्ट चोरी क्या नहीं बताओ? हृदय चोरी के लिए बची? हाँ है, मैं हृदय को निकाल भी लिया फिर भी है, ऐसे चोर है। ऐसा कभी चोर अब तो कोई हुआ हृदय चोरी करने वाला? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, और क्या चोरी ना, नवाम मुदस्यामल कांति चोरम। बोले नए नए शारदीय मेघ जब आकाश में उठा, उसका नीलिमा उसका रंग को चोरी कर लिया, उनको भी पता नहीं चला। भैया किसी के कपड़ा उतार लेता है, किसी के रंग उतार लेता है, किसी के हृदय निकाल लेता है, पता ना चलता ना, यहाँ रिकॉर्ड मरा है। इसलिए तो चोराग्रगण्य है, इसलिए चोरों की सरदार हूँ, ऐसे फालतू फालतू चोरी क्या है? और क्या क्या बोलते भाई देखो कि जब इतने बड़े नामकरा चोर होता है, अब बाकी जो छोटे मोटे चोर होते हैं बोलेंगे भैया हमारे चोरी चोरी करके इतने साल बीत गया, पेट नहीं भरता, काम नहीं चलता। चलो अगर कोई चोरी से काम निकालना है, कोई बड़े चोर के साथ ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारा भी काम बन जाए, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो उनके पार्टी में, क्योंकि सबसे अग्रगण्य चोर हुए ना, तो बहुत चोर उनके पास आए, उनके पार्टी में ज्वाइन किए। बोले भाई हमको भी थोड़ा सिखाओ, तालीम दे दो, ट्रेनिंग दे दो, हम भी चोरी काम कर रहे हैं भाई, हम आपका साथ रह करके एक्सपर्ट हो जाएं। तो बोलते हैं कि मेरे शरण में जो आए, जो चोर से मेरे साथ आते हैं, क्या करते हैं, उनका देखभाल करते हैं ना, देखभाल सबसे पहले उन्हीं से चोरी करता हूं। बोले ये मेरा रिकॉर्ड, पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, जो मेरे चरण में आते हैं आश्रय लेने के लिए, अब उन्हीं का चोरी क्या, उनका समस्त चोरी करता हूं, सब कुछ चोरी कर लेता हूं उनका। बड़ा खतरनाक, तेरे पास आएगा कौन, जो आएगा उन्हीं से चोरी करता हूं ना। फिर भी लोग आते, लोग आते, पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। बोलते हैं कि जो तो ऐसे चोर आते हैं मेरे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, उनसे चोरी करता हूं, वो आते हैं सारे अपने डिग्री अपने एक्सपर्टीज अपने माल मसला यंत्रपाति के साथ आते हैं, तो उनको ऐसे चोरी कर लेता हूं उनसे। लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं सब कुछ छोड़ करके अकिंचन होकर के आते हैं, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह, अकिंचन कहते हैं उनको जिनका किंचित मात्र वस्तु अपना कहने के लिए नहीं है, ये भी मेरा है अपना है, ये भी नहीं मेरा है ही नहीं, मेरा कहने के लायक किंचित मात्र जिसका नहीं हो उसको कहा जाएगा अकिंचन। ऐसे अकिंचन जिसका अपना कुछ है ही नहीं, वो केवल मेरे चरण में शरणागत हो जाते हैं। बोले उनका उनका तो कुछ है ही नहीं, क्या चोरी करेगा, वो तो सब छोड़कर आए हैं। बोला जो सब कुछ छोड़कर मेरे पास में आते हैं उनका भी चोरी, उनका भी चोरी करता हूँ, क्या करता हूँ ना, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम। बोले उनका तो हाल खराब करता हूँ, क्या उनको भिकारी बना करके दर दर भटकाता हूँ रास्ता में। हाँ, करोति भिक्षुं, भिकारी बनाता हूँ, पथिगेहहीनम, घर द्वार छोड़ करके रास्ता में भटकाता हूँ उनको, जाओ कईयों को किए, रिकॉर्ड है उसका। हमारे संप्रदाय के आचार्य जो ब्रज को प्रकाश किए, श्री रूप सनातनादि गोस्वामी, उनके अब बायोग्राफी पढ़ेंगे, 500-600 साल पहले अंग बंग कलिंग इतने बड़े तीनों स्टेट के प्रधानमंत्री राजस्व मंत्री थे, इतने बड़े पोस्ट था, एक एक बोट भर करके गोल्ड कॉइन उनका इनकम होता था। उनको अब चोरों के पास आए और चोर सबसे पहला उन्हीं का चोरी किया, कैसे किया, त्यक्त्वा तुरुण मशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत। मंडल समझते हैं, मंडल अधिकारी, एक जो आजकल कमिश्नर, कमिश्नर बोलते हैं, कमिश्नर को मंडल अधिकारी कहते हैं ना, इस मंडल के वहां 4-5 डिस्ट्रिक्ट के मिल करके एक मंडल होता है, कमिश्नर जो होते हैं 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे ऐसे अशेष मंडलपति, ना जाने हजारों हजारों मंडल कमिश्नर उनका सार 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 करते थे, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के जो साकर मलिक दबरी खास थे, कितने कमिश्नर तलवा चाटने वाले होते थे उनके, ये डिस्ट्रिक्ट डीएम कलेक्टर भले तो छोड़ो, वो कोई पूछे नहीं उनको, कमिश्नर ऐसे गढ़ते थे। उनको छोड़ दिए, त्यक्त्वा तुच्छ करके छोड़ दिए, अशेष मंडल पति श्रेणी में हजारों हजारों कमिश्नर के ऊपर में महामंत्री पद था, और ये महामंत्री इलेक्टेड महामंत्री नहीं थे कि 5 साल के बाद फिर नर्माल, ऐसे नहीं है, वो कैसे महामंत्री थे, सिलेक्टेड थे, लाइफ लॉन्ग उनका कोई जाने वाला नहीं थे, ये मंत्री पद परमानेंट था उनका, राजा ने उनको दिया, ये इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे। तो वो मंत्री पद था उनका साकर मलिक दबरी खास के। अब ये चोरों के पाले में पड़ गए, सारे छूट गया, त्यक्त्वा तुरुणम अशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत, ऐसे तुच्छवत छोड़ दिया, पावर पोस्ट पोजीशन धन रत्न छोड़ करके, क्या किया न भूत्वा दीन गणेश को करुणया को न कंथाश्रितो, करुणा से द्रवीभूत होकर के भिखारी बन गए, कोपीन कंथा मात्र धारण करके पेड़ के नीचे भटकते रहे, आंखों देखा हाल सभी लोग जानते हैं, ऐसे बन गए, ये उनका कमाल है। बोलते जो अकिंचन होकर के मेरे चरण में आते हैं उनको भिखारी करके छोड़ता हूं, ये तो मेरे स्वभाव, करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। और क्या करते हैं, बोलते हैं केना प्यहो भीषण चोर इद्र दृष्ट सुतोवान जगत त्रयेपि। अरे इतना भीषण चोर है ऐसा तुम्हें तीन लोक में कहीं देखा नहीं ना सुना नहीं, ऐसा चोरी करता ना। हाँ बोलते अरे ये चोर की बात क्या कहें, चोर आए चोरी करे तो इतने बड़ी भारी चोर करता, ये इतने खतरनाक चोर है ना, क्या चोर नहीं आता, चोर आएगा तो क्या चोरी करेगा, चोर नहीं केवल चोर का नाम ही ले लो माल उठ जाएगा, माल उठ जाएगा घर से भैया चोरों का नाम लेने से। अब काम क्या करे, वो स्वयं आए तो क्या ना करे। बोले कैसे ना, जदीय नामापी हरती अशेषम, अरे नाम ही इतने पावरफुल है चोर का, घर में उठकर चोर का नाम लिया तो माल खलास होने लगे, नाम लेने से वो आया ही नहीं। नामापी हरती अशेषम, क्या अशेष हरण करता है ना, गिरी प्रसारान अपि पापरासीन, पर्वत पर्वत प्रमाण के अन्याय अनीति अनाचार पाप कर्म खलास हो जाएगा, केवल चोरों का नाम लेने से ये सब खलास हो जाएगा। जितने स्टॉक अभी रखे ना, अरे स्टॉक सब खाली होगा डर के मारे उनका नाम लेने से, और स्वयं आ जाए तो क्या ना हो जाएगा। ऐसे खतरनाक चोर, ये चोर को बुलाना नहीं चाहिए। जदि अनामापि हरति असे संग गिरी प्रसारान अपि पापरासीन, आश्चर्य ननु रूप ननु चोर इद्र, ये बड़ा आश्चर्य बात है, ऐसा चोर है कि नाम से भी माल उठ जाता ना। हाँ दृष्टो सतो वान मया कदापि, ऐसा तो मैं इसे चोर को ना कभी देखा ना सुना, ऐसे खतरनाक चोर है ना। हाँ तब आचार्य ठाकुर कहते हैं, बोलते हैं कि अरे बाकी किस क्या चोरी किया मुझे पता नहीं, मेरा क्या क्या नहीं किया। ठाकुर बिल्वमंगल ने कहते हैं, बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में सुने ना आपने। हाँ बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि अरे मेरा तो सब था, संपत्ति था, घर था, परिवार था, धन था, पत्नी था, सब कुछ था, उनके पल्ले में पड़ा, मुझे क्या क्या ना क्या क्या, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणी, मेरा धन ले लिया, मान सम्मान ले लिया, इंद्रिय शक्ति ले लिया, आंख निकाल लिया, तथेन्द्रियाणी प्राणस्य हत्वा मम सर्वमेव, मेरा प्राण तक हरण कर लिया, सब कुछ ले लिया मेरे से, कुछ नहीं छोड़ा, धन मान इंद्रिय प्राण सब कुछ ले लिया मेरे से, ऐसा मेरा हाल किया, ऐसे चोर है। बोलता लेकिन लेकर के सब जा नहीं पा रहा था, पकड़ लिया मैंने उसको, आज पकड़ में आया, क्योंकि सारे लूट के कैसे लूटेगा। बोलते धनम च मानम च तथेन्द्रियाणी प्राणस्य हित्वा मम सर्वमेव, मेरा तो सब कुछ लेकर जा रहा था। बोले पलाय से कुत्र, ए चोर कहाँ भाग कर जा रहा है, सभी लेकर जा रहा है तू ले नहीं पाएगा, ध्रुतोद्य चोरम, आज तो धरूंगा तुझे, पकड़ूंगा, पकड़ा ही हूं तुझे। तो चोर बोलने लगा, भैया तू मुझे पकड़ेगा, मुझे अब तक दुनिया में कोई पकड़ने वाले हुए नहीं, तू कैसे पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ पाया, ना मैं किसी में पकड़ में आया, ना हो सकता किसी में पकड़ में नहीं आया, कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैं तो पकड़ूंगा आज तुझे, मैं तो पकड़ा हूं, तू चोरी कर भाग रहा है, मैं पकड़ा हूं अद्य चोरम, आज तो पकड़ूंगा तुझे, पकड़ेगा किस प्रकार पकड़ेगा, ना मेरे भक्ति से पकड़ूंगा, आपके चरण के प्रति मेरा जो समर्पण है, मेरा जो भक्ति है, इसी में तुझे पकड़ूंगा। अरे पकड़ करेगा क्या, पकड़ कर क्या करेगा, अरेस्ट करूंगा, बांधूंगा तुझे, और चोर को क्या पूजा करूंगा, चोर को बांध के बांधूंगा। बांधेगा, हंसने लगा चोर, तू मुझे कैसे बांधेगा, क्या रस्सी है तेरे पास, आजकल तो बाजार में प्लास्टिक की रस्सी मिलता है, वो तो ऐसे गर्मी मेल्ट हो जाता है, हैं? ये रस्सी में क्या तुझे बांधेगा, पता है मेरे रिकॉर्ड ना क्या। बोलते हैं कि छिन्ना सी घोरंग जम पास बंधम, तू क्या मुझे बांधेगा, जमराज के पास को छिन्न भिन्न कर देने वाला हूं, जमराज के पास से बंधन कितना कड़ा बंधन और किसका है। बोले जमपास को तोड़ देता हूं, छिन्न भिन्न कर दे, छिन्न सी घोरंग जमपास बंधम, और क्या न भिन्न सी भीमम भवपास बंधम, ये भव संसार के बंधन इतने कठिन तगड़ा बंधन है, उसको भी टुकड़ा टुकड़ा तोड़ ताड़ कर रख देता हूँ, संसार खिन्न भिन्न कर देता हूँ। भिन्न अस्ति भीमम भवपाश बंधम, बहुत भयानक भवपाश को तोड़ देता हूँ। छिन्न अस्ति सर्वस्य समस्त बंधम, सभी का सभी प्रकार के बंधन को तोड़ ताड़ देता हूँ। तू मुझे कैसे बांधेगा, कौन सा बंधन है तेरा पास? बोले मैं मानता हूँ, आपका रिकॉर्ड है मुझे पता है, जम पास को तोड़ने वाला है, भव पास को तोड़ने वाला है, समस्त बंधन को मोटने मिटने तोड़ देने वाला है, लेकिन मेरा बंधन को तोड़ नहीं सकता। भाई तेरा पास कौन सा रस्सी है? बोलते हैं कि मेरा पास रस्सी क्या है, भक्ति दामनासी मया निरुद्ध। मेरा रस्सी क्या है, भक्ति रूपी रज्जु, मेरा भक्ति रूपी रस्सी से तुझे बांधूंगा। उसको तोड़ पाएगा? तो चोर सीधा हो गया, बोला अरे बाप रे बाप, ये खतरनाक रस्सी है तेरा पास ना, तेरे श्री चरण प्रति समर्पित अनन्य भक्ति है, इसी से बांधूंगा तुझे। उसको तोड़ पाएगा? तू जमपास तोड़ा है, भवपास तोड़ा है, अन्य अन्य बंधन तोड़ा है, उसको तो तोड़ नहीं पाएगा। चोर सर हिलाया, बोला ना उसको भारी पड़ जाएगा, भक्ति रूपी रस्सी की तोड़ना मेरे बस में नहीं लगता, तो भारी कठिन है। तो बोलता कि भैया तेरा क्या मतलब बांध कर तू क्या करेगा मुझे, मुझे बांध कर तेरा क्या मतलब है? बोला क्या मतलब है, तू मेरा सब कुछ चोरी करके लिया। हाँ वैसे बोलता क्या मतलब है, ना लिया तो चोरी करके लिया, फिर तू मुझे बांध कर क्या करेगा? बोला बांध करके जेल में डालूंगा। जेल में डालेगा? हंसने लगा। बोले पता नहीं, मेरे बारे में पता है ना क्या? अरे मेरा पैदाइश जेल में हुआ है, मुझे जेल दिखाता है, मेरे रिकॉर्ड वहीं से शुरू हुआ है, हैं? बोला मेरे मामा का रयाल जेल था, मेरे पेरेंट्स 8-10 साल पहले से वहीं थे, हाथ में बड़ी पैर में कड़ी लगा हुआ था, कड़ी बड़ी लगा हुआ था कई सालों से। अब मैं तो आधी रात को जेल में ही आया, घनघोर अष्टमी अंधकार रात्रि, बारिश हो रहा था घनघार, और ये मोटी मोटी जेल का कबाड़ था, मामा जी कई मोटे मोटे मूछ वाले सिक्योरिटी लगा रखे थे, हाई टाइट था, बड़े सीरियस मामला था, और जेल में मेरा पैदाइश हुआ। होते ही कुछ मिनट में सारे मम्मी पापा का बंधन खुल गया, मोटी मोटी दरवाजा खुल गया, ताला खुल गया, मूछ वाले सिक्योरिटी सो गए, अब सारे जमुना जी पार करके अब तू मुझे जेल दिखा रहा है? तू मुझे जेल क्या दिखा रहा है? जेल का तो मेरा जन्म पैदाइश है उसमें, जेल में मुझे क्या डालेगा, क्या बिगाड़ सकता? तब बिल्ला मंगल ठाकुर कहते हैं, हाँ मुझे पता है जेल तुझे कुछ नहीं करने पाएगा, तू जेल से पैदा ही तरह, तू के जेल से क्या मतलब है तुझे? लेकिन मेरा जेल ऐसा नहीं है। फिर कौन सा जेल है? अंधकार कारागृह में डालूंगा। अंधकार? अंधकार मेरे अंदर से लाइट ऐसे निकलता है, अंधकार क्या करेगा? तेरे डार्क इलेक्ट्रिक लाइट की कोई जरूरत नहीं मुझे, कुछ तू हमारी डाल रखा हूं, हमेशा लाइट निकलता है, तेरे लाइट से क्या जरूरत है अंधकार? नहीं ठीक है, लाइट निकलता है, लेकिन मेरा जो डार्क प्रिजन है, मेरे जो अंधकार कारागृह है खतरनाक, इससे तू घबराएगा? इसने ना कौन सा कारागृह है दुनिया में मुझे मेरे बंध कर मेरे जेल में डालेगा, बताओ? बोला बताओ ना। हाँ बोलते, मन मान सतामस राशि घोरे, मेरा मन रूपी अज्ञान अंधकार जो तम गुण के भरा हुआ है मेरा मन, ऐसे मानस में, मानस कारागार में तुझे डालूंगा। बिल्लमंगल ठाकुर कहते हैं, कौन सा जेल है वो? मेरे मन, मेरे भक्ति में बांधूंगा और मेरे मन में, मन रूपी कारागार में डालूंगा। मन मेरा अंधकार कर, कई जन्म जन्म का अंधकार, तमसा तमगुण भरा हुआ है, उसी में डालूंगा तुझे। तम माने अंधकार, अज्ञान तमंधम, मन मानस तामस राशि घोरे, कारागृहे दुख मये निबद्ध, अब दुख में पड़े रहो इस कारागृह में डाल दूंगा। बोला भैया उसमें डाल देगा? मन में डालूंगा। अरे तो खतरनाक है, उसको कैसे तोड़ूंगा? बोले ये कोई कंक्रीट में, ईंट में, पत्थर में थोड़ी बनाया गया, ये तो मन है, देखो मन को तोड़कर, मेरे मन है, इसमें डालूंगा तुझे, वही जेल में डालूंगा। बोला कब तक रखेगा? मेरा और भी काम है, कब तक डालेगा, कब तक इस जेल में डाल के रखेगा? तो बोलते कब तक रखूंगा, बोलते लहस्व हे चोर हरे चिराय, हे चोर हे हरि चिर लाइफ, इसको क्या बोलते हैं आजीवन कारादंड, ये नहीं कि 10-5 साल के, आजीवन कारादंड घोषित कर दिया जा, लाइफ लंग जेल में पड़े रहो। हरे चिराय, अरे इतना दिन रखेगा ना, अब सौचर्य दोष उचितम अभिदंडम, तू जो चोरी किया ना उसके लिए उचित दंड तो वही है, यही उचित दंड होता, मैं क्या करूं, आजीवन कारादंड हुआ समान। ऐसे आजीवन कारादंड घोषणा करके अब आचार्य ऐलान कर रहे हैं लास्ट श्लोक में, कारागृहे बस सदा हृदय मदिये, हे मेरे चोरों की सरदार, हे चोराग्रह गण्य पुरुष, अब इस कारागृह में चुपचाप बैठ जाओ। कौन सा कारागृह, मेरे हृदय मदिये, मेरा हृदय रूपी अंधकार कारागृह में बैठो चुपचाप। चोरों सरदार बोलते हैं देखो मुझे मामा पापी की, मम्मी पापा को पूछो, बाकी सबको पूछो, मैं बड़े खतरनाक हूँ, बहुत नटखट हूँ, ये ठीक नहीं बैठता हूँ। आप बोलते बैठो, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, इधर भागता हूँ इधर भागता हूँ, नाना प्रकार काम काज करता रहता हूँ, बदमाशी करता रहता हूँ। बोले वो मुझे पता है लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों, कारागृहे बस सदा हृदय मदिये, बोले यहाँ तो चुप बैठना पड़ेगा, मुझे चुप बैठाएगा कैसे, मद भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चल सन, ऐसे भक्ति के रस्सी में बांधूंगा, पैर में जांग में कमर में हाथ में गले में, हील डोल नहीं सकता, निश्चल भाव से बैठो, चल फिर नहीं सकता। कारागृहे बस सदा हृदय मदिये, मद भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चल सन, मेरे भक्ति रूपी पास में ऐसे दृढ़ बंधन बांधूंगा, हील नहीं सकते, मेरे हृदय में बैठना पड़ेगा, निकाल नहीं सकते। त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, हे कृष्ण यद्यपि मैं जानता हूं आपके आंख के पत्ता हिलने से प्रलय हो सकता है, करोड़ों करोड़ों विश्व को प्रलय करने में समर्थ हो, प्रलय कोटि शतांतरेपि, लेकिन मेरे ये से अंधकार तमगुण से भरा हृदय को मोचयामी, अगर तू हे तेरा ताकत मेरा इस हृदय को मुख्य कर उद्धार करके दिखाओ, मेरे हृदय से बाहर निकाल करके दिखाओ। ये चैलेंज करते हैं, ये चोरों की सरदार, ये भक्तों की सरदार, ये चैलेंज हो रहा है, मैं डाल करके मेरे हृदय में भक्ति बांध के रखता हूँ, निकल कर दिखाओ, हिलडुल करके दिखाओ, हिल भी नहीं सकता ऐसे बांधूंगा तुझे। इस प्रकार से अगर आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे प्रभु हो चाहे माता हो, अगर आप अपने इष्ट देव बाल गोपाल को आपके मन या आपके हृदय में इस प्रकार बांध करके निश्चल बैठा देना चाहते हैं, आपके हृदय से बाहर नहीं निकल पावे, तो क्या उपाय है, इस अष्टकम को उनके सामने पाठ करो। हे चोराग्रगण्य पुरुषम, मैं भी आपको बांध करके मेरे हृदय में बैठाना चाहता हूँ, कारागृहे बस सदा हृदय मदीये, इस प्रकार प्रार्थना करो। इस जो सरदार उनको बांधा, ये चोरों के पुरुष को एक दूसरे पुरुष को बांध डाला, इनके प्रार्थना के चलते वो भी बंध जाएंगे। इसलिए ये मासोत्तम पुरुषोत्तम मासे भगवान हरि 3 साल तक तो हम ये काम किए, शुभ अशुभ पाप पुण्य खूब किए, 3 साल के बाद 1 महीना देते हैं जिसमें कोई तिथि बार शुभ लग्न ये सब करण कुछ नहीं है, सारे कर्म शुभ अशुभ पाप पुण्य को छोड़ करके केवल भक्तिमय कर्म करना है। इस पुरुषोत्तम भक्तिमय मास में भक्ति कर्म में अगर ऐसे पुरुष के पास में ऐसे प्रार्थना अष्टकम प्रार्थना करके ऐसे पुरुषोत्तम को आपके मन या हृदय में बांध डालते हैं तो आपकी पुरुषार्थ के प्रकट किए, आप अपने पुरुषत्व को उत्तम उपयोग कर सकते हैं इसी मास में। इसलिए पुरुषत्व उत्तम मास है, परफेक्ट यूज ऑफ योर एनर्जी ऑफ योर टाइम इसी मास में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के स्तव स्तुति, इस प्रकार भावना, इस प्रकार चिंतन, इस प्रकार के मनन करके प्रभु को हमारे हृदय में ला सकते हैं, वो लाए हैं। एक से एक भक्त आचार्य प्रभु को अपने हृदय में बांध कर रख लिए, इतने भयानक प्रलय, कोटि 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 प्रलय रचने वाले प्रभु अपने हृदय में चुपचाप बैठे हैं, निकल नहीं पाते, अब बस हो जाते हैं, भक्ति के रस्सी को तोड़ नहीं पाते हैं, हृदय में बैठे रहते हैं, तोड़ नहीं पाते। तो इसी प्रकार आप लोग सब भक्तगण है, इस मासोत्तम पुरुषोत्तम मास में अगर ठाकुर जी के सामने इस प्रकार स्तुति करेंगे और फिर राग के साथ में मृदंग करताल के साथ में समाज गायन करेंगे तो हो ना हो ठाकुर आकर के किसी का आपके मन में हृदय में बैठ जाए, क्या पता, है ना नहीं? हरे कृष्ण। अच्छा लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो विगत 6 दिन से मृतासुर मर नहीं रहे थे, तो आज उनको आज उनके पूरा होगा नेट। तो थे तो असुर शरीर, लेकिन थे बड़े भक्त श्रेष्ठ। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि लड़ाई के मैदान पर दोनों प्रख्यात योद्धा, एक असुर नायक एक सुर नायक, एक देवराज इंद्र और एक असुर राज रुद्र, दोनों सम्मुख युद्ध में खड़े हैं। एक के हाथ में भगवान की आदेश, भगवान की कृपा, भगवत शक्ति निर्मित वज्र बजरी, और दूसरे भगवान के भक्त असुर के शरीर में वृत्र त्रिशूल धारण करके। काल तक आप सुने थे मृतासुर ने इंद्र को बोल बोल करके थक गए, भैया मारो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मारो मुझे। इंद्र नहीं मार रहे थे, तो आपने प्रभु को प्रार्थना करने, बोले उनके पीछे क्यों टाइम खराब करूँ, मेरे प्रभु को प्रार्थना करूँ, उनके प्रभु को ध्यान लगा करके उनसे बातचीत करने लगे, आपने इष्टदेव से बातचीत करने लगे। बातचीत करके इष्टदेव से लंबा समय बातचीत, इंद्र सब सुन रहा था, ये क्या बोल रहा है। बातचीत करके आंख खोले, ध्यान मिट गया, बोले क्या होगा, सचमुच ठाकुर आएंगे मुझे मारेंगे, मेरे मरण तो उनके हाथ में है, ठाकुर जी ने मुझे फिक्स कर दिया, उनके हाथ में मरूंगा, लेकिन ये मार नहीं रहा है बदमाश। गुस्से में आ गए, बोले प्रभु ने तुझे अपॉइंटमेंट किया मारने के लिए, तुझे अस्त्र दिया मुझे मारने के, तू मार क्यों नहीं मुझे। बोले तू ऐसे नहीं मारेगा, तुझे प्रार्थना करने से काम नहीं होगा, मारने के लिए तुझे गुस्सा आना चाहिए ना, तब तो मारेगा, गुस्सा नहीं आएगा, अब तुझे मारता हूँ। तुरंत खड़े हो गए, बोले तुझे अभी ऐसे बात करने से ही चलेगा। खड़े हो गए, खड़े होकर के गर्जना किए, गर्जना आप सुनते, पहले गर्जना किए थे कई लोग संचलित हो गए थे, फिर तीसरी बार गर्जना किए, आपने त्रिशूल को उठाए, उठा करके ऐसे घुमाए इंद्र को मारने के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके त्रिशूल का नोक प्रलय के अग्नि के समान दिखाई पड़ता था, जुगांत अग्नि जैसे भयानक ऐसे आ रहा था। इंद्र देख के बाप रे बाप, ये प्रलय अग्नि जैसा त्रिशूल मेरे ऊपर चला रहा है। लेकिन इंद्र बहुत बड़े योद्धा थे, कई हजार बड़े बड़े असुरों को युद्ध करके मारे हैं, वो एक्सपर्टिस था उनके पास। यद्य मृतासुर पहले उनका लाइफ आया, इतने बड़े असुर का पल्ले पड़ा, लेकिन ये सूर का इस प्रकार की क्षमता बहुत देखे उन्होंने, तो उन्हें डरे नहीं। क्यों डरे नहीं, क्यों वज्रहस्ते वज्र था। तो मृतासुर खूब जोर से सूल उठाकर जब निक्षेप किया इंद्र के ऊपर, जुगंत प्रलय शूल, तो इंद्र ने आपने वज्र को चलाए, फर्स्ट टाइम वज्र चलाए, अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। वज्र चलाए, वज्र तो अमोघ अस्त्र है, वज्र गया जाकर के आकाश में इस त्रिशूल को खंड खंड कर डाला, काट डाला। अब इंद्र को रहा, ओ इट्स वर्किंग, हाँ काम करता है, मुझे पता नहीं था, मैं सोचा वही बटन दबाने से काम कर रहा है। आप देखो ना, आप जो नए नए फोन करते हैं, एक पता चल गया, अच्छा इसी में डाउनलोड होता है क्या, आप सीख गए, आप जैसे लगा पता हो गया, मतलब बता लो अब तो मैं कर लूंगा, है ना, तो सीख गए उन्होंने चलाना। आप जैसे सीख गए और उनका बढ़ गया, हाँ उस्ताद हो, अब मुझे चलाना आ गया वज्र, तुरंत चलाए, जिस हाथ से उन्होंने त्रिशूल फेंका था इस हस्त को लक्ष्य करके वज्र मारे, वज्र अति वेग से गया जाकर के उन्हें दक्षिण भुजा को मूल से काट डाला। सुखदेव गुस्सा में, तो ये हाथ, ये कोई हाथ थोड़ी था, महानाग उर्ग वासुकी के जैसा था। वासुकी इतने बड़े नागराज है, भागवत में वर्णन आता है कि जब देवता असुर दोनों मिलकर के खीर सागर में अमृत मंथन करने लगे, और मंथन में दंड कौन था, मंदराचलम, मंदर गिरी, विशाल गिरी पर्वत जो मंथन दंड था उसमें रस्सी बने थे, कौन, वासुकी नाग, मतलब कितने मोटा चौड़ा होंगे, इतने बड़े पर्वत को घुमा घुमा करके समुद्र मंथ डाले, कितने बड़े विशाल शरीर होगा, रस्सी होगा, ऐसे विशाल मोटे लंबा चौड़ा हाथ था उनके दक्षिण भुजा मृतासुर का, इतने कुश लंबा, इतना मोटा विशाल था। तो बोलते हैं कि ये उर्गराज महानाग वासुक के जैसा विशाल दक्षिण भुजा को वज्र से काट डाले, भुजा मूल से, उनके कंधे से ही काट डाले, इतने बड़े आकार से वो कट गया। बोलते हैं जैसे पहाड़ के समय में भारी बारिश होता है, पहाड़ से बिल्कुल मिट्टी पत्थर लग करके लाल लाल पानी बहता है धारा, बोलते हैं ऐसे नदी के धारा की तरह रक्त चलने लगा, नदी के धारा की तरह बहने लगा, ऐसे भुज कट करके गिरा और ऐसे रक्त बह रहा था। सारे देवता ऋषि गंधर्व हा जय जयकार किए, जय जयकार के, इंद्र जय हो क्या काम किया, गला हाथ काट दिया, ऐसे कर रहे थे सभी का जय जयकार करते करते हटात सब चुप हो गए। क्यों, मृतासुर अभी बाएं हाथ थाली था, बोला अच्छा एक हाथ काट कर इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बाएं हाथ में एक परिघ उठाया लोहे का, उठा करके दो पैर आगे गया, उनका एक एक पैर में 10-5 किलोमीटर चला जाता था, इतने बड़े शरीर था उसका, जा करके उनके ठोड़ी पर बार आए थप्पड़ इंद्र के, और उनके गाड़ी क्यों मारा, उनको मारा, बोले अरावत को भी मारा और उनको मारा, एक चाटा मारा थोड़ी पर उन परी को फेंका, वो लगा इंद्र मुंह बंक गया, इतने जोर से हिल गए, उनका हाथ से वज्र निकल कर जाके उनके चरण में गिरा, जा मृतासुर के पैर के पास में हाथ से वज्र शस्त्र निकल गया, जाके गिरा, वो गाड़ी में बैठे हाथी के ऊपर, हाथ से वज्र छूट गया, जाकर इतने दूर में गिरा, और सारे देवता ऋषि गंधर्व सब देख रहे हैं, हाहाकार मच गया, धन्य है मृतासुर, हाथ कट गया, बाएं हाथ में मार कर वज्र गिरा दिया, अब भी अभी हाथ कटा है, भरे कोई क्या बोलते हैं ATS लो कि हॉस्पिटल में जाओ, फर्स्ट एड मंगाओ, कुछ नहीं, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है इतने प्रोफ्यूजली, बाएं हाथ से फेंका, उनका धाड़ निकल गया, वज्र निकल गया हाथ से, इंद्र तो मुंह नीचे करके शर्मिंदा हो रहे, कैसे उठाऊं, हाथ में कुछ रहा है नहीं, कैसे मारूं हाथ से निकल गया बस, इतने शर्म लगा, और निकल कर पास में गिरता तो वो जाकर उन्हीं के पास गिरा, उन्हीं के चरण में गिरा, और इंद्र तो बिल्कुल काले पड़ गए, मुनिचे करके सारे देवता ऋषि रोने लगे, बोले इंद्र को विषण हो गया, क्या करें, वो कैसे जाएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, उनके चरण में जाकर उठाकर लाएंगे, ओ बोले भले जाए, हार जाऊं नहीं जाऊंगा, शर्म के इज्जत की सवाल है, मेरे हाथ से गिर गया और क्या उसे उठाओ, क्या उठाओ, जाऊं भरे उन्हीं के पास पड़ा, कैसे उठाऊं उसको, सभी देख रहे हैं, CCTV देख रहा है, सब कैमरा फोटो उठा रहे, कैसे जाऊंगा, तो शर्म के मारे बहुत लज्जित हो रहे थे, ओ दांत को भी, यहां भी उनका सुलेन आ गया था, अब क्या करे, हाथी भी ऐसे मुंह करके खड़ा था, इंद्र भी मुंह करके खड़े थे दोनों और वज्र गिरा पड़ा है मृतासुर के पास में, खाली हाथ, बुरी हाल में इंद्र है, क्या करूं, हाथ भी काट दिया, सोल भी काट दिया, फिर बाएं हाथ में इतनी बदला लिया, पता नहीं क्या करेगा इसे खतरनाक वीर। अब चुप हो गए, बोले अब तो लड़ाई खत्म, अब वज्र हाथ में अस्त्र निकल गया, अब क्या करूं, तू चाहे तू खुद उठाकर मेरे ऊपर चला दे। लेकिन मृतासुर मृतासुर यहां पर उनका लंबी प्रवचन किए इंद्र को समझाने के लिए, इंद्र बिल्कुल लज्जित होकर के, शर्मिंदा होकर के बोले, समझ गए मैं हार गया, और सारे ऋषि देवता सब देख करके हाहाकार मचा रहे हैं। लेकिन मृतासुर उनको समझाने लगे, बोले हे इंद्र क्यों लज्जित हो रहा है, क्यों भाग्य को दोष दे रहा है, अरे लड़ाई के मैदान में हार जीत हमेशा होता है, कोई नहीं कह सकता मैं जीत जाऊंगा मैं हार जाऊंगा, क्योंकि हमारा हाथ में है नहीं, ना जीत हमारे हाथ में है ना हार हाथ में है, हमारे हाथ में जो पुरुषत्व हम काम करें, बाकी रिजल्ट भगवान गीता में घोषणा किए, कर्मण्य अधिकार अस्तु मां फलेषु कदाचन, काम करने में अधिकार मैंने तुझे दिया, रिजल्ट में अधिकार मैंने, तू फल के आशा पहले क्यों करता है, फल तेरे अधिकार के नहीं है, फल मेरे अधिकार के, मैं चाहे दूं या न दूं, कितना दूं, काम करने का मतलब तो काम ही करो। तो इंद्र को समझाने लगे, बोले देखो इंद्र ऐसा मत समझो, उठो वज्र उठाओ, क्या श्रम करना है, मैं नहीं उठाऊंगा तेरे अस्त्र, मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि क्यों ऐसा कह रहे हैं, बोलते हैं कि मृतासुर ने निश्चित करके जान चुके हैं ये युद्ध से विजय प्राप्ति करना मरण श्रेष्ठ है, मैं मरना चाहता हूं, वो जीतना चाहता है, वो मुझे मारे वो जीते, वो करता क्यों नहीं है, मैं तो मरना चाहता हूं जल्दी, क्योंकि मैं मर करके वैकुंठ चाहूंगा, ये जीत करके कचड़ा स्वर्ग पद पोष्ट में जाएगा, ओ समझा नहीं, वो जाए मुझे मारे, दूसरी प्रकार मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु यही डिसाइड किए इस प्रकार मरूंगा मैंने, तो इसलिए उनको समझाने लगे, बोले देखो ये चराचर ब्रह्मांड में जीत केवल एक ही पुरुष का होता है, वो कभी नहीं हारता, वो हमेशा विजयी होता है, उनका नाम भी विजय है, वो है केवल विष्णु, जिनका कभी हार नहीं हुआ, कभी हारते नहीं, हमेशा जीतते हैं, उनके अलावा उस ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं जो कह देगा मुझे मैं हमेशा जीतूंगा कि हारूंगा नहीं, वो जिसको जीता है वो जीते, जिसको हराए वो हारे, उनके ऊपर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उनके प्रेरणा से हम आए हैं, उनके प्रेरणा से कर्म करो, वो चाहे जीताए वो चाहे हराए उनके ऊपर है, फल में हमारा अधिकार नहीं है, फल तो वो देंगे। इंद्र मानो कहेगा लेकिन तू तो मेरा हाल खराब कर रखा है, दांत नोड़ दिया, अब वो अस्त्र निकल गया तो क्या करूं मैं लड़ूं, अरे फिर भी मुझे पता है, तुझे पता नहीं कि भगवान जिसके तरफ पे होते हैं विजय उसके तरफ का होता है, और प्रभु तेरे तरफ से हैं, तेरे तरफ से अनाउंस कर दिए तू मुझे मार करके स्वर्ग जीतेगा, तो जय काल भगवान काल रूप में हमेशा रहते हैं, तो काल इतने शक्तिशाली होता है भले किसी को पता नहीं चले, सभी चराचर चीटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तो काल ही कंट्रोल करता है, कब किसी को किसी प्रकार जिताता है हराता है क्या करता है क्या करता है, एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन अज्ञानी जीव अपने आप को मानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन कोई करता नहीं भोगता नहीं धरता नहीं, सब कुछ करने कराने वाले वही हैं, बाकी हम सब कैसे, हम इधर करते, अरे तब साफ सब डम्मी है, बोलते पत्र मृगम दारुमय, बोलते कि लकड़ी में बना हुआ जो जैसे काठपुतला होते हैं, काठपुतले आदि पपट डांस में वो पुतला थोड़ी नाच करते हैं, पीछे जो सूत्रधर है वो धागा खींचता है तो नाचते हैं, बोले ऐसा ही हम लोग सब पुतले हैं धागा पकड़ उनके हाथ में, वो जैसे धागा खींचते हैं पैर खींचेगा तो पैर उठेगा, हाथ खींचेगा तो हाथ उठेगा, उन्हीं के हाथ में, सचमुच सत्य बात है, हम भले उसको कभी सोचते नहीं है, कभी सोच करके देखो, आप अभी जितने यहां बैठे हैं सभी के सामने मैं इस आसन में बैठ करके बड़ी बड़ी आवाज से बात कर रहा हूँ और मुझे भले गर्व हो मैं कह रहा हूँ सब सुन रहे हैं, लेकिन ये महामूर्खता है मेरा, मैं महामूर्ख हूँ अगर ऐसा सोचूं तो, क्योंकि ये जो आवाज निकल रहा है ये मेरा ताकत नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे अनेक लोग हैं संसार में जिनका मुंह है, जिह्वा है, बोलना चाहते भी हैं लेकिन बोल नहीं पाते, है ना, नहीं गूंगे हैं बेचारे, चाहते बोलने हूं करते रहते बोल नहीं पाते। तो इसलिए गर्व करना नहीं है कि मैं बोल पाता, उनकी कृपा है जब तक बुलाए तब तक बोलूं, एक मिनट में स्विच ऑफ कर दे हूं हो जाऊं, चलेगा नहीं, जीव घूमेगा नहीं, कंट्रोल उनके हाथ में। हम इसको मन को सोचते नहीं कि हम करते हैं, कुछ नहीं करता, एक मिनट में खेल खत्म कर देंगे। ऐसा आप लोग भी मत सोचिए, आपके जीवा चलाते हैं, आवाज निकलना पड़ता है, हम लोग सब श्रोता है, दो दो कान है, खुले है, कोई ठिपी जाम नहीं है, हम बैठकर सुनते हैं। नहीं भैया, इस संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जिनका भी दो दो कान है, वो भी होल खुला है, सुनना चाहते भी हैं लेकिन चाह कर भी सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए मत सोचो कि आप सुन रहे हैं करके, नहीं, वो सुना रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं, ये बोला रहे हैं इसलिए हम बोल पा रहे हैं। ये हमारा मूर्खता होगा जो मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुनूंगा सुनूंगी, अरे मूर्ख कहीं के तेरा क्या ताकत है, क्या औकात है, तू सुनूंगा सुनूंगी, वो स्विच ऑन करके रखा है, सुना रहा है, जब तक सुनाएगा जिस सुनाएगा वही सुन पाएगा, जिस समय स्विच ऑफ कर दे खत्म नहीं कर पाएगा। हम देखें कई लोग बढ़िया से काम कर रहे थे, थोड़ा सा कहीं फ्यूज उड़ा दिए, एक साइड गया खत्म, हाथ पर है चल नहीं रहा, चाहते हैं चलाना, चाहने से क्या होगा, क्या बोलते हैं उनको, पैरालाइज नहीं सके, वो पैरालाइज बोलते हैं कि पैरालाइज में ब्रेन में हैमरेज हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ता, हैमर कहां से ब्रेन में हुआ, ब्रेन तो कुछ चपटा पटा कुछ हुआ ही नहीं, सब डोलडार ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहां से इंटरनल हैमरेज, कहां हैमरेज हो गया, यहां एक साइड अपंग हो गया, है नहीं उनका कंट्रोल, किसका है कोई समझ नहीं पाता। अब भी तक बड़े बड़े सर्जन को पता नहीं, भैया मेरा हड्डी तोड़ गया था, तो प्लास्टर किया, प्लास्टर कर दिया, लेकिन जॉइंट कैसे हो गया, हड्डी से हड्डी जोड़ा कैसे, अभी तक कोई डॉक्टर को पता नहीं है, नहीं जान सकते, उनके करने कराने वाले वही हैं, वही करते हैं। जैसे पशु पक्षी चिड़िया जाल में फंसे हुए, इसी प्रकार इस संसार रूपी जाल में हम सब फंसे हैं, हाथ पर पीट रहे हैं, लेकिन उन्हीं के कृपा से जो बोल रहे हैं, हाथ पर पीट रहे हैं, नाच रहे, खा रहे, कर रहे हैं, कर रहे हैं, वही जो कर रहा है वही कर रहे हैं, जिस दिन बंद कर देगा सब बंद हो जाएगा। सत्य बात ही, कोई स्वाधीन नहीं है, बुरी तरह से पराधीन है, बुरी तरह से। आप बोलेंगे नहीं जी, आप ऐसे करने थोड़ी होगा, ये मानते हैं हम स्वाधीन हो गया, हमारा बात मानते नहीं, अरे तेरा बात कौन, हाँ सभी आजकल बेटा भी बाप का नहीं मानता है, बीवी भी नहीं मानती है, और बेटी भी नहीं मानती है, कोई नहीं मानते, मानता हूं, मानते थे अभी नहीं मानते, बड़े हो गए, इतने उनको खिलाया पिलाया लिखाया, लेकिन अभी नहीं बात मानती है, मानते हैं। अरे भैया वो भले नहीं मानते, लेकिन कम से कम मैं तो मेरा मालिक हूं, हाँ तो है, और क्या, मैं तो कम से कम स्वाधीन हूं ना, मेरे ऊपर मैं तो मालिक हूं, मेरे शरीर का मैं हूं, मन करेगा क्लास में आऊंगा, मन करेगा नहीं आऊंगा, मन करेगा बैठूंगा, मन करूंगा खड़ा रहूंगा, मन करूंगा लेट जाऊंगा, जो मेरा मन करूंगा, आई एम दी ओनर, मैं स्वाधीन, मैं मालिक हूं। कम से कम बाकी कोई संबंधी मेरे बात नहीं मानते, मैं किसी का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मेरे अधिकारी तो मैं हूं, इतना तो मानोगे ना, नहीं भैया तू भी तेरे अधिकारी भी नहीं है, ये किसे कहेंगे, ना ना ये अब झूठ बोलते, मेरे मैं मेरा अधिकार तो मैं हूं, मैं जो मन करता है करता हूं। बोले अच्छा बताओ ना, बताओ ना, तेरा कभी मन करता है तेरा बाल सफेद हो जाए, कभी नहीं करता, तो होता है कि नहीं, तेरा बात नहीं, बाल मानते हैं, जो ये बाल ही तेरा बात नहीं मानते हैं तो कैसा अधिकारी है तेरे शरीर का? तेरा मन कभी करता है मैं दांत सब निकल जाए? नहीं, वो तेरा बात मानते निकल जाते ना? नहीं तो कौन तेरा बात मानता है? आंख नहीं मानेगा, दांत नहीं मानेगा, बाल नहीं मानेगा, और सारे ऐसे हो जाएगा जिस शरीर के द्वारा अभी स्पोर्ट्समैन थे, अभी इतने बड़ी खिलवाड़ कुश्ती करने वाले, क्या बोलते हैं उनको, जिमनास्ट, हाँ, बक्सर, पहलवान, क्या क्या सब अवार्ड लेते थे, कुछ ही समय, कुछ ही साल के बाद थर थर कांपेंगे, या आपने ये टूथब्रश ब्रेस्ट उठा नहीं सकते, ऐसे ही कांपते रह जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, हाथ उठा करके बेटा ऐसे करेंगे। इसी शरीर में अभी भी देखा जाता है कैसे हो गया। को आप चाहता है ऐसा बनना? आप नहीं चाहता, आपके परिवार वाले नहीं चाहते, समाज नहीं चाहता, गवर्नमेंट नहीं चाहता, फिर कैसे हो जाता? कोई नहीं चाहता, क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते। तुम्हारा सलसल, तू सिंगल इंडिविजुअल चाहने से क्या मतलब है? वो जो करते हैं होकर ही रहेगा। तो इसलिए कोई ना तो इंडिविजुअली स्वाधीन है, ना होलसेल कोई स्वाधीन है, कोई कुछ नहीं है, टोटली मालिक को ही है। जैसे अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। जिनको जैसे नचाएगा सब बाध्य है इसे नाचने के लिए, एकमात्र ईश्वर से कृष्ण है, बाकी कोई नहीं। सब हाँ बोले, यहां तक कि साक्षात महातत्व, महातत्व के सृष्टा पुरुष अवतार, मूल प्रकृति, इंद्रियां, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतकरण आदि सारे मिल करके इसे महातत्व, मिल करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पुरुष अवतार तक भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड में जब सृष्टि क्रिया हुआ, ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा अंड पैदा हुआ, एक गर्भशायी पुरुष पैदा हुए, ब्रह्मांड के अंदर सारे जल भरे और सारे हुआ, हजार वर्ष तक वो ब्रह्मांड ऐसे तैरा, कुछ नहीं हो रहा था। हजार वर्ष तक पानी में तैरा, कुछ नहीं हो रहा था। जब तक भगवान प्रवेश किए तब फिर विकार होने लगा, सब काम बनने लगा। जब उन्हीं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जो जो हम देख रहे हैं सब काम नहीं। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ये महत्त्व प्रकृति विकार नहीं समझेंगे। आपके लिए मोटा उदाहरण क्या है, जैसे आप नए बिल्डिंग बनाए, घर बनाते हैं, तो उसमें 50,000 रुपया जमा करके ट्रांसफार्मर बैठाएंगे पावर के लिए, फिर वायरिंग करेंगे, लाखों रुपया खर्चा करके पूरे वायरिंग करेंगे घर को, सारे तार डालेंगे अंदर 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 भीतर सब, और ये झूमर लाइट, ये लाइट फिटिंग सब चकाचक करेंगे, कई प्रकार के बल्ब लगाएंगे, फिट ये सब करेंगे, सब करेंगे, लेकिन केवल लाइट कनेक्शन नहीं दिए, बाकी सब किए, लाइट जलेगा? अरे 10 लाख खर्चा किया मैंने, इलेक्ट्रिफिकेशन किया, लेकिन केवल करंट नहीं आता, उसमें क्या मतलब है? जलना चाहिए, सब इतना पैसा खर्चा किया, चलेगा? नहीं चलेगा भाई। आप जाकर क्यों नहीं जलेगा? बल्ब फिट किया, बल्ब को तोड़ो, फिलामेंट को तोड़ो, कहां से होगा? कुछ नहीं हो। जब तक वो चेतन शक्ति नहीं आए, वो नित्य शक्ति नहीं आए, कुछ भी कर लो सब यूजलेस। ठीक इसी प्रकार भगवान है चेतन चेतनानाम, सारे चेतन को चेतन करने वाले एक चेतन प्राणी वही है, उन्हीं के द्वारा सभी चेतन होते हैं। इस शरीर है, नख से लेकर सिख पर्यंत हमारा सब है, अब 50-50 साल से हमारा साथ है इस शरीर में, कोई 50 साल के, कोई 20 साल के, 30 साल में बिताए इस शरीर में है, यही हाथ, वही पैर, नाखून, बाल, सब कुछ है, आंख, नाक, कान, सब कुछ है, बढ़िया पास में बैठे हैं। क्यों पास में बैठे हैं? क्योंकि वो चेतन शक्ति हमारे अंदर है, कृपा करके वो हमारा साथ है, इसीलिए 50-60 साल से हम सबके पास बैठे हैं अभी बढ़िया से। अगर इसी क्षण हमारा साथ छोड़ दे, 10 मिनट नहीं लगेगा, आप बोलेंगे अरे हटाओ,
डेढ़ बड़ी है, हटाओ, दुर्गंध है। अरे 50 साल से पास में बैठा था, दुर्गंध नहीं हो रहा था, अभी 50 मिनट भी नहीं हुआ। नहीं, क्यों? क्योंकि वो छोड़ दिया साथ। वो अगर साथ छोड़ दे तुरंत उठाओ कपड़ा। अरे क्या हो गया? वही तो है, वही हाथ है, वही पैर है, वही मुंह, वही नाक, वही कान, सब तो वही है, वही तो है ना, वही तो है, लेकिन वो नहीं, वो तो गए, वो गए, वो कहाँ गए? कौन चले? नहीं, दादाजी नहीं है, वो गए, दादाजी चले गए। ये क्या है? वो तो दादाजी के डेड बॉडी, ये उनके डेड बॉडी है, वो तो गए। अच्छा, क्यों बोलते गए करके? उनका हाथ ना, हाथ पैर वही है, लेकिन वो चले गए, दादाजी नहीं है। क्यों दादाजी नहीं है? क्या प्रमाण है तेरा पास? ना प्रमाण। अरे पहले में दादा दादा दो बार बोलता था मुझे, बात पर क्या बेटा क्या होगा पूछते थे, अब मुझे 10 बार चिल्लाता हूँ बोलते नहीं है, इसलिए प्रमाण है कि दादा चले गए। अच्छा, जिनको तो दादा दादा दो बार बोलते थे, बात करते थे, वो देखा था ना? हाँ, किसको देखा था आपने? कैसे दिखाई पड़ता? यही शरीर था ना? ना, हाँ यही तो था, वही तो अभी भी है। जो चले गए बोलते हैं उसको देखा था क्या? नहीं। फिर क्यों बोलते चले गए? जिनको दादा बोलने से जो सुनता था वो तो वही था, अभी तो वही के सामने सोया है, फिर क्यों बोलते चले गए? ना, वो तो है, वो सब ठीक है, लेकिन फिर वो नहीं है। हम इतने मूढ़ है, मूर्ख है, पश्यदपि न पश्यति, भगवान कहते हैं सभी हम लोग कई दशा में। आत्मा के बारे में जब विषय उठेगा सब बोका हो जाएंगे, सुन कर भी अनसुनी, देख कर भी अनदेखा हो जाएंगे, समझ कर भी अनसमझ हो जाएंगे। बात तो सही है, और कोई से देखा नहीं, उन्हीं को देखा था, उन्हीं के गोद में खिल रहा था, उन्हीं के पास बैठ रहा था, वही सब कर रहे थे, अभी भी वही सोए हैं, लेकिन दादा चले गए। जो दादा चले गए वो कैसे थे ये पता नहीं, लेकिन वो है नहीं। अद्भुत है, महामूर्ख भी यही बात कहेगा, हम भी यही बात कहेंगे। इतने अज्ञान, इतने घोरे अज्ञान में पड़े, किसी को अपना बारे में पता ही नहीं। अब जब शरीर आत्मा विलग हो जाता है तब बोलते हैं कि मर गया, घट गया, डेड बॉडी, उसी समय थोड़ा सा पता चलता, बाकी तो समय सब तो इसी को बोलते हैं कि केवल वही है मालिक, सब कुछ वही करा रहा है। तू क्यों सोच रहा है ये युद्ध तो एक बाजी जैसा है, जुआ खेल जैसा, प्राण के बाजी लगा करके लड़ते हैं 64 में जैसे, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन तेरे बारे में तो गारंटी है, प्रभु ने तुझे बता दिया कि काल तेरा फेवर है, जय कालम, तू जीतूगा, तेरे फेवर है, तू इसलिए मुझे मारो, जीत लो ना। बाप रे बाप, ऐसे हो गया? नहीं, इतने समझाने लगे, इतने समझाने लगे तो इंद्र ऐसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य युक्ति पूर्वक बात सुन करके इंद्र आश्चर्य होकर देखे, बोले एक भयानक असुर हाथ कटा हुआ है, ऐसे रक्तक ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसी बात कह रहा है मेरे सामने खड़े होकर के, मतलब इतने युक्ति युक्ते, इतने ज्ञान युक्ते, इतने त्याग वैराग्य पूर्ण बुद्धि पूर्ण विवेक पूर्ण बात कह रहा है, आश्चर्य हो गए, धन्य है। अहो दानव सिद्धोसी, बोले तू सिद्ध पुरुष है, ऐसा मति तरह है, आश्चर्य होकर देखे, असुर शरीर में रह करके महातम गुणी, असुर शरीर खान पान सब कुछ गड़बड़ होगा, असुर शरीर है ना, फिर भी तेरे बुद्धि इतना, आश्चर्य होकर देख रहे थे। मन में लेकिन आया, नहीं ये नया बात नहीं है, मैंने देखा भी सुना भी, प्रहलाद महाराज भी असुर कुल में थे, बलि भी असुर कुल में थे, लेकिन एक से एक बढ़कर भक्त हुए थे, तो वह भी ऐसा है, ऐसे देखा जाता है संसार में, बुरे से बुरे असुर कुल में भी महान से महान भक्त हुए हैं। धन्य है तू असुर, लड़ाई के मैदान में मृत्यु के घाट पर खड़े होकर के इतने विवेक वैराग्य भक्ति बात कर रहा है। हो दानव सिद्ध सी, धन्य से मतिरिद्रिसी, आपके मति इतने महान है, ऐसे भगवान जगदीश्वर के प्रति आप इतने मन आपके लगाव है, ऐसे भक्ति किया है आपने,
मुझे लगता है कि इसीलिए आप कह रहे हैं, क्योंकि आप इतने बड़े भक्त हैं, आपका भाव इतने ऊंचा है, तो आप तो भगवान के प्रेम भक्ति के अमृत सागर में तैर रहा है, इस स्वर्ग राज्य का एक गट्टर के गड्ढे में तू क्यों आएगा, इसलिए उसको देखता नहीं तूने। हम तो गट्टर के कीड़े की तरह ऐसे पड़े हैं, और तू तो अमृत सागर में तैरने वाला हंस हो, इसलिए तू उसको देखेगा नहीं। मैं ही समझ रहा हूं, तू ही समझ रहा है, तू फिर भी मार मुझे। बोले और क्या मारूं, पहले तो मारने सोच रहा था, एक तेरे भाई को मारा था, ब्रह्म हत्या लगा था, और तू उनके भाई ब्राह्मण है, उल्टी तू महाभक्त है, इतनी बड़ी बड़ी बात तू कर रहा है भक्ति वैराग्य पूर्ण में सुन करके मैं खुद आश्चर्य हूं। वृतासुर बोले ये फिर आ गया मूड में, नहीं मारेगा लगता। फिर बाएं हाथ से एक लोहा चपटा उठाकर मारे, उठाकर बोले मारूंगा, अभी मार दूंगा तुझे, मर गया समझो। ऐसे आवाज कर गुस्सा होकर उठाए, तो इंद्र उत्तेजित होगा, बोले रे इतने जुक्ति इतने भक्तिपूर्ण बात कहकर भी फिर मारने आ रहा है, क्योंकि गुस्सा दिला रहे, नहीं तो मरेंगे नहीं। तब इंद्र ने तुरंत आकर दौड़ कर उठाओ वज्र, मार, नहीं तो मारूंगा, उठा के लो। ओ इंद्र अभी देखा, अभी शर्म करने से नहीं चलेगा, मार डालेगा। अरे गाड़ी से उतरे, फटाक से दौड़ कर जाए, उनके पैर से उठाकर वज्र ले आए, आके बैठ के बोले मारू ना, मार। चलाए वज्र, वज्र चलाए, बाएं हाथ जो परिघ उठाया था वो रे मूल से कट गया, खचाक काट के उड़ा दिया। वो भी इतने मोटा विशाल बाहुखंड था, कट गया, रक्त रक्त के फवारा निकला झरझर, दोनों हाथ कट गया। अरे जितने देवता ऋषि देख रहे थे सब ताली बजाए, वाह 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 वाह, क्या काम हुआ, सब हंस रहे थे, बोले अब तो जीत गया, वो दोनों हाथ कट गया, लगता है जैसे विशाल पर्वत पंखहीन हो गया, रक्त की नदी फैल रहा है, पर्वत नीचे गिर पड़ा, इस विशाल पर्वत की तरह मृतासुर दोनों बाहु कटा हुआ खड़ा है, दोनों हाथ कट चुका है, खाली धड़ खड़ा है, वर्णना कर रहा है बेचारा, क्या कर, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में सब जब हंस रहे हैं, सब चिल्ला रहे, इंद्र सोचा मैं जीत गया, खुद जीत गया करके मार नहीं रहा है, बोले मार नहीं देगा, मैं मेरे प्रभु के पास जा नहीं पा रहा, मुझे मार तो सही। इंद्र बोला तेरे निकल हट गया सब, मुझे सब मरे, अब जीत गया बोल रहे हैं मुझे। तब वृतासुर ने सोचा कि ये काम नहीं बनाने वाला, अभी भी नहीं मारेगा, हाथ काट करके अपना बड़ाई लेने वाला है। अरे हाथ काट कर तू मेरे क्या कर दिया, अभी भी खा जाऊंगा तुझे, तू किसे खा पाएगा, हाथ पर है नहीं, तू किसे खाएगा। अच्छा तब वृतासुर ने, आचार्य कहते हैं वृतासुर ने डिसाइड किया, बोला टाइम खराब करने का बेकार है, टाइम खराब क्यों, और तुमको मुझे मार ही नहीं सकते, प्रभु ने मुझे बताया कि इंद्र के हाथ में तू मरेगा, इंद्र के हाथ में पावर दिया, वज्र दिया मारने के लिए, वो मार ही नहीं रहा है बदमाश, तो और कोई है नहीं दुनिया मारने के लिए, तो उसी को ही खा लेता हूं खत्म, जो और क्या टाइम खराब करूं। बिल्कुल ध्यान लगाए प्रभु चरण में, बोले यही से ही समाधि मर जाऊं, और क्या मारेगा नहीं, और क्या उसको लेकर, वही तो मारने वाला है, उसी को सुहा कर दूंगा, उसके बदले को मारने वाले होंगे नहीं, तो स्वयं मर जाऊंगा, ध्यान लग के मर जाऊंगा। तो ऐसे चिंता करके दोनों हाथ नहीं था, सीधा मुंह को फैला है, आपने मुंह फैला दिए। सुखदेव गोस्वामी पता नहीं कहां से फोटो खींचे थे, वो बता रहे हैं कि नीचे वाला होठ धरती की पकड़ा, ऊपर वाले होठ आसमान को छुआ, इतने बड़े मुंह खोल दिया जबड़ा, उसके अंदर जो जीव पता नहीं एक्सप्रेस हाईवे की तरह निकल रहा है, जमुना एक्सप्रेस की तरह, कहां निकले दिल्ली टू लखनऊ, और दांत तो कैसे बड़े बड़े से निकले हुए, यही से भयानक रूप में, यही से मुंह जब खोला, जो जो सब ताली बजा रहे थे हाथ ऐसे ही रहेगा कांपने लगे, ताली क्या बजा, बाप रे बाप, ये समुच्चय ब्रह्मांड को निकल जाएगा लगा, इतने बड़े मुंह खोला, अब चलने लगा। बोलते हैं कि विशाल गिरिराज के चरण निकल पड़ा, पदचारी गिरिराज चलने लगता है, जैसे पहाड़ चल रहा है पैर में, ऐसे पैर में मुंह खोल करके चला, पूरा शरीर दिखाई नहीं पड़ता, केवल मुंह दिखाई पड़ रहा है, और पैर चल रहा है, चलता हुआ गुफा आ रहा है, इतने बड़े मुंह। इंद्र फिंद्र कहां जाएं, ये तो संसार को निकल जाएगा,
वहाँ दौड़ कर कोई भाग कर जाए, एक्सप्रेस हाईवे लंबा है, जीव इतना बड़ा है, कहाँ जाए। थर थर कांपने लगे, देखते देखते हाहाकार मच गया, गाड़ी सहित पैसेंजर को निकल गया। ऐरावत प्लस इंद्र प्लस वज्र प्लस बाकी जो था समन के साथ, साथ समन के साथ टप टैबलेट की तरह ले गया अंदर। दांत में नहीं लगाया, जीवा में भी इधर उधर नहीं किया, थोड़ा जीव में थोड़ा इस तरफ से इस तरफ कर देता, हड्डी पड्डी तोड़ चढ़ जाता, कुछ नहीं किया, ना जीवा हिलाया ना दांत लगाया, सीधा मुंह में लिया टपाक। छोटा वस्तु था, छोटा सा टैबलेट, उसके लिए क्या दांत जीवा लगाना है। कभी छोटा होम्योपैथिक होम्योपैथिक मेडिसिन खाया ना, छोटी छोटी गोली, उसके लिए जरूरत पड़ता क्या? वो कहीं चला जाता पता नहीं। ऐसे इंद्र प्लस ऐरावत प्लस वज्र कहाँ पता चला गया, मुंह में पता नहीं चला, टपक के गया, लेकर आंख बंद करके सीधा उनके गले के अंदर गया, उनको पता भी नहीं चला कोई लगा। जब वज्र फज्र उस्ताद सारे सहित गया अंदर, पेट के अंदर चला, इतने बड़ा पेट था, इतने बड़ा मुंह था, कुछ भी नहीं हुआ, इंद्र का चला गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इंद्र को सीधा इनपुट कर लिया, निकल गया सीधा। इंद्रदेव गए क्योंकि नारायण अस्त्र की खूब साधना किए थे, नारायण कवच का इतने साधना किए थे तो नारायण कवच का प्रभाव दिखा है, इसलिए मृत्यु नहीं हुआ। कई आचार्य ने प्रश्न करते नारायण कवच जिन गुरु से जो मंत्र को प्राप्त किया था, सिद्ध मंत्र को, इसी गुरु को तो सर काट दिया, गुरु हत्या किया, तो मंत्र का प्रभाव किसे करेगा उसका? बोला बात सही है, नारायण कवच जिसे सिखा था उनको मार दिया, इसलिए नारायण कवच भी काम नहीं कर रहा था। बोले फिर किसे बचा? न जोग माया वाले न चैव, बोलते भगवान ने अपने शक्ति इनपुट किए थे इंद्र के। बोले इंद्र तू मरेगा नहीं, तो जाओ, इसलिए भगवान की जोग माया शक्ति नारायण कवच को एक्टिवेट कर दिया, इस प्रभाव से इंद्र एंड इंद्र बैठा था ऐरावत दोनों नहीं मरे। और वज्र हाथ में था, पेट के अंदर ऑपरेशन किया। अभी तक कई से डॉक्टर है पेट के अंदर जाकर इनसाइड ऑपरेशन करे नहीं, बाहर से काट कूट करते चश्मा लगा करके। इंद्र सीधा मुंह में गया इनपुट, गले के अंदर जा करके स्टोमाक में पता नहीं बृहद अंतर के क्षुद्र अंतर में कहीं बैठा, इतने बड़े था साइज, हाथी के साथ अपने गाड़ी सहित पैसेंजर मिल करके अस्त्र निकाल कर वहीं आरी चलाया काट कर, वहीं काट पीट कर लगा एक हफ्ता करीब निकला होगा, फोड़ फाड़ कर निकला। मैंने उसके अंदर इतने बड़ा पेड़ था, उनको जैसे ऐसी कमरा में बैठते हैं सांस नहीं घुटता, उसका सांस नहीं घुटा, इतने बड़ा था साइज, तो इनको चल गया पेट के अंदर रह करके, पेट को काट करके होल करके बाहर निकला है, जिंदा निकला है। वो गाड़ी भी निकला, पैसेंजर भी निकला, ऐरावत भी निकला और इंद्र भी निकला, अस्त्र लेकर निकला। निकल करके देखा तो बैठा है बिल्कुल निश्चल, क्योंकि वो समाधि में शरीर छोड़ चुके हैं, जब मुंह में लिए तभी शरीर छोड़ चुके थे अपने आप। बोले ये क्या मारेगा, और तो उनके बिना कोई मारने वाला है ही नहीं, मैं स्वयं प्रभु में गया, अब उनको टपक गया, अब वो क्या तो मरेगा ना, मैं तो अंदर गया, मैं जा रहा हूं। वो आपने समाधि से जा चुके थे लेकिन समाधि में गए थे लेकिन शरीर उनका जीवित था, तो इस शरीर को पेट को काट कर सबके सामने इतने बड़े होल किया, ऐरावत भी निकला उसके ऊपर लोडेड़, इंद्र भी निकले उसके बैठ करके पेट से फाड़ कर निकले अंदर से, सारे देवता देखे फाड़ कर निकल रहा है कोई जन्म हो रहा है पेट फाड़ करके, ऐसे ऑपरेशन हुआ। और डॉक्टर कोई छोटे बच्चा को काट कर क्या बोलते हैं उसको, सीजर है करके निकालते हैं, छोटे बच्चे नहीं ये बिल्कुल पुष्ट इंद्र हाथी की गाड़ी के साथ पैसेंजर निकला, वो अंदर से काट करके, डॉक्टर नहीं काटा वही खुद काटे, आपने अस्त्र से काट कर बाहर निकले। निकल कर पीछे मोड़ कर देखे तो चुपचाप पत्थर की तरह बैठे हैं, तब सांस लगा, हिलाया हाथ फाड़ डोला, बोला कुछ नहीं करता, तब बोला अब गला काट डालूंगा, अब गला काट डालूंगा करके वज्र उठा करके गले को काटने के लिए लगाया, वज्र को फूल पवार में लगाया, पूरी शक्ति से वज्र प्रयोग किया, महाशक्ति से, इतने वेग से वज्र चल रहा था उसके गला को चारों तरफ काटने के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमें गिनती रखें, दो अयन उत्तरा अयन और दक्षिणा अयन पूरा लगा, मतलब 360 दिन लगा गला काटने के लिए, एक साल लगा, कंटिन्यूअस डे एंड नाइट चक्र चल रहा था वज्र से,
इतने बड़ा हाई पावर लेद मशीन काट रहा था, काट रहा था चारों तरफ गलाव के काटे काटे के एक साल दिन रात काटने काटने लगा, तब सर निकला, सर कट गया। एक साल के बाद सारे देवता गंधर्व जक्ष ऋषि के सामने वृतासुर के शरीर से उनकी दिव्य ज्योति निकला, सबके देखते देखते संकर्षण के उनके परिकर भक्त बन करके उनके चरण में सेवा के लिए चला गया। श्री वृतासुर जी की संकर्षण पार्षद तत्व सभी के सामने प्राप्त, सभी के देखे देखे। एक साल तो लगा गला काटने में लिए, एक साल के बाद सीधा संकर्षण हुआ, तो पहले चला गए थे लगे में, केवल अभी ज्योति गया वहां। इस प्रकार से यद्यपि महा असुर शरीर में थे, महा युद्ध में खड़े थे, इतने भयानक युद्ध में महा शत्रु के सामने भी इन प्रकार भक्ति के व्याख्यान, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के प्रवचन और जो अति श्लाघनीय मृत्यु, ऐसे प्रशंसनीय मृत्यु ना कभी हो सकता किसका, अपने आप में स्वयं मर करके भगवत पद में पार्षद बन जाना, सभी के सामने पार्षदत्व लाभ किए, ये अति श्लाघनीय मृत्यु है। इस प्रकार प्राप्त किए तो उसको सुन करके परीक्षित महाराज बैठ गए हद होकर के, बोले गुरुजी कैसे संभव है, ऐसे महा असुर कैसे इसे भक्ति हो गया, हम लोग का भजन करते करते भक्ति ऐसे नहीं हुआ। बोले बेटा ऐसा नहीं मत सोचो कि वो असुर था ऐसे था भक्ति हो गया, भक्ति ऐसे नहीं, पहले जन्म से भक्ति था। कैसे तो अभी आगे कहेंगे, कभी सुजोग मिलेगा तो कहेंगे। वो वृत्रासुर पहले जन्म में साक्षात संकर्षण पार्षद थे, विद्याधर चित्रकेतु थे, उनका जीवनी उनसे शुरू करेंगे। कैसे इंद्र की ब्रह्म हत्या पाप लगेगा, फिर इसमें वृतासुर के उसके पूर्व जन्म की बात कहेंगे, चित्रकूट महाराज की कथा। तो जो भी हो आज आपके समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार पूरा तो नहीं, यथाशक्ति संक्षेप में इस वृतासुर प्रसंग को हमने प्रयास किया आपके सामने पेश करने के लिए, क्योंकि प्रभु जी ने यही आदेश दिए थे। भागवत 12 स्कंद है, 12 से बीचों बीच छठा स्कंद से उस छठ स्कंध के बीचों बीच ठीक सातवां अध्याय, 7 से लेकर 11-12 अध्याय तक निचोड़ बोले ये बीच में निकाओ काम। हाँ, जब बीच में कोई खड़ा होगा बाएं दाएं ऊपर नीचे सब काम चलेगा, साइड में रहने से कोई पास में रह जाएगा, बिल्कुल बीच में पकड़े। तो पुरुषोत्तम मास के बिल्कुल बीच के समय में ये भागवत का बीच से, उस स्कंध का बीच से, ये समस्त जितने प्रकार के ज्ञान भक्ति वैराग्य सभी कथा का सबके बीच में वृतासुर प्रसंग आता है। सभी की प्रशंसनीय, सबको श्लाघनीय प्रशंसनीय वृतासुर प्रसंग, इसी को यथाशक्ति हमने प्रयास किए। निश्चित रूप से इतने अच्छा तो हम बोल नहीं पाए हैं, फिर भी आप लोग दीर्घ 7 दिन आपने आकर के मेरा इस कर्कश वाणी को आप सहन किए, इसलिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। हरे कृष्ण।
धन्यवाद करेंगे महाराज जी का, जो शेड्यूल है पूरा था महाराज का, एक एक दिन का एक एक घंटा बिल्कुल बुक रहता है, एकदम व्यस्त है महाराज। उसके बीच में कुछ पास में हमने महाराज से निवेदन किया, महाराज ने हमें अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, उसमें महाराज का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ में आप सब भक्तों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सब बड़े श्रद्धापूर्वक आए, साथ ही रोड कथा का आपने आनंद उठाया। और विशेष धन्यवाद हम करना चाहेंगे भक्ति रत्नाथ प्रभु का, जिन्होंने इस बोली कथा का आयोजन किया। तो मैं निवेदन करूंगा जिनको आप बुजुर्ग के नाम से जानते हैं, महाराज से निवेदन करूँगा कि महाराज को
सुंदर एडिशन हमारे मुद्रे का है।
है वैष्णो स्वामी महाराज की।